रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भगवान जनकपुरी में फुलवाड़ी में दो बार जाते हैं, एक तो कल पधारे आज्ञा लेकर गए, नाथ लखनपुर देखन चाहे। गुरुजी हंसे, कहा कि तुम अपना सुंदर बदन दिखा करके मुखड़ा दिखा करके आ जाओ। आ गए, गुरु महाराज की सेवा की। प्रातःकाल हुआ, जगे, नहाए धोए, संध्या वंदन वगैरह किया। समय जानी गुरु आयसु पाई। देखो अब ये पुष्प वाटिका का प्रसंग है, ये एक प्रसंग केवल तुलसीदास जी की रामायण में है। पुष्प वाटिका का प्रसंग अध्यात्म रामायण में नहीं है। पुष्प वाटिका का प्रसंग अध्यात्म रामायण व्यास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने, उसमें नहीं है। पुष्प वाटिका का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और भी बहुत सी रामायणें हुई है, पुष्प वाटिका का प्रसंग किसी रामायण में नहीं। हमारे तुलसीदास जी ने ये प्रसंग कहां से लिया, क्या कल्पना हुई? तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग भागवत के प्रसंग से लेते हैं कि क्या पता कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम। इस रामायण में नाना पुराण निगमागम सम्मत बातें हैं, तो भागवत पुराण को तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि भागवत पुराण है, ये प्रेम पुराण है। भगवान कृष्ण का अवतार है, ये प्रेमावतार है। तो वो जो भागवत में जो भगवान का प्रेम है, गोपियों का भगवान के प्रति, भगवान का गोपियों के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का गोस्वामी जी पर बड़ा अद्भुत असर पड़ा। उस प्रेम प्रसंग को लेकर यहां भागवत की नकल करते हैं हमारे सुखदेव ये तुलसीदास जी महाराज। कितना सुंदर वर्णन है ये प्रसंग, इतना विलक्षण है, इसको बहुत ऊंचे भाव से सुनना चाहिए, ऊंचे भाव से इसका मनन करना चाहिए। क्योंकि राम और सीता है, ये कोई हमारे जैसे गंदे शरीर वाले नहीं थे। हम लोगों का गंदा शरीर, हम लोगों के गंदे गंदे कर्म किए हुए, उन कर्मों का फल भोगते भोगते जाने कहां से गुड़कते 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 आए, ऐसे न तो राम है न सीता जी है। जब उनका श्री विग्रह ही दिव्य है, तो उनका प्रेम कितना दिव्य होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि सीता और राम के प्रेम को लेकर के हमको हमारे जीवन में जो प्रेम है, उस प्रेम में जो मलिनता है, उस मलिनता को दूर करने का है ये प्रसंग है। तो समय जानी गुरु आयसु पानी, आयसु पाई। समय देख करके गुरुजी ने आज्ञा दी। समय देख रहे, क्या समय देखा होगा? चले प्रसून चले दऊ भाई, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। गुरु महाराज राम जी को आज्ञा देते हैं कि बेटा जाओ, ये फुलवाड़ी थी, पास में फुलवाड़ी थी, क्योंकि जनक जी महाराज ने स्पेशल जगह पर इनको रखा तो पीछे फुलवाड़ी तो जाओ जाओ बेटा, संध्या वंदन का समय हो रहा, प्रातः काल भी संध्या ही, और जाओ फूल लेकर के आओ। लेन प्रसून चले दऊ भाई, तो दोनों दोनों गुरुजी की आज्ञा से गए। कल गए थे नाथ लखनपुर देखन चाहे, महाराज लक्ष्मण जी चाहते, आज गुरुजी ने आज्ञा दी जाओ। तो भूप बागुबर, राजा का जो बगीचा था, राजा का बगीचा, बहुत रहस्य की बातें आएंगी। हो भूप बागबर देखो जाई, इन्होंने जाकर के वो बगीचा देखा। अब आप लोगों को मालूम है कि राम जी का विवाह किस दिन हुआ था, मिंगसर सुदी में हुआ था। मिंगसर सुदी पंचमी है ना, ये राम जी के विवाह का दिन है, मिंगसर सुदी पांचम। हे फालतू की बात करते हो, आप गए थे क्या वहां देखने के लिए? हम नहीं गए थे, तो हमारे रामायण में लिखा है। अब रामायण में क्या लिखा है, रामायण में लिखा है कि जब विवाह हुआ था तो हिम ऋतु, हिम ऋतु होती है मिंगसर और पोष, तो हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, अगहन मास, अगहन मास माने ये मिंगसर मास। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, और लगन शोध विधि कीन विचारू, तो वहां पर बड़े बड़े विद्वानों ने, पंडितों ने तय किया था, तो मिंगसर शुद्धि पांचम थी। चलो पांचम नहीं होगी लेकिन मिंगसर शुद्धि थी, ये तो राम तुलसीदास जी ने लिख दिया। यहां लिखते हैं भूप बागबर देखो जाई, जहां वसंत ऋतु रही लुभाई। वहां बगीचा देखा तो इतनी सुंदर वसंत ऋतु वहां पर है। अब देखो वसंत ऋतु तो होती है चैत बैसाख, एक ऋतु में दो महीने होते हैं, चैत बैसाख ये तो है बसंत। अब आगे जेठ और आषाढ़ ये गर्मी, सावन भादवा ये बरसात, आसोज काती ये है शरद, और मिंगसर और पोष ये है हिम, और माघ और फागुन ये शिशिर। अब ये इतने महीने तक राम जी थोड़ी रहे वहां, जनक जी के यहाँ चैत बैसाख में जावे और फिर मिंगसर में जाकर के धनुष तोड़ा और फिर विवाह हुआ, कैसे संभव है? तो भाई वहां तो लिखा है हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा, और यहाँ लिखा है जहां वसंत ऋतु रही सुहाई रही लोभाई, तो इसका कैसे सामंजस्य करेंगे? तो इसका सामंजस्य यूं है कि बगीचे की शोभा काय से होती है, बगीचा सदा वसंत ऋतु में ही रहता है। तो आज राम जी महाराज जिस बगीचे में गए हैं, उस बगीचे में जहां वसंत ऋतु रही लुभाई, जहां वसंत ऋतु स्वयं लुब्ध होकर के रहती है, वहां न ऋतु होते हुए भी वो ऋतु रहती है। माने मिंगसर का महीना भले ही हो परंतु वो वसंत ऋतु के अंदर जैसे पौधे प्रसन्न खिले हुए, नए नए पल्ले, नव पल्लव फल कुसुम सुहाए, ये सब वहां स्थितियां थी। माने मिंगसर के महीने में भी वसंत ऋतु जैसा आनंद था। निज संपत्ति सुर रूख ल जाए, देव देवताओं के वृक्ष है वो भी ऐसे नहीं थे जैसे यहां जनक जी के यहां पर वृक्ष थे। बड़ी सुंदर चातकों की, कोकिलों की, कोयलों की, कीरों की, माने तोतों की, चकोरों की आवाज आ रही थी, और उस बगीचे के अंदर बीचों बीच एक बहुत सुंदर तालाब था, बहुत सुंदर तालाब मणियों की, जिसमें पेड़ियां बनाई हुई, बहुत साफ स्वच्छ जलाशय, उसके अंदर कमल के फूल खिले हुए और हंस कारण्डव आदि कई प्रकार का गुंजन करते हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, बहुत सुंदर तालाब देखा भगवान ने। अपने भाई सहित वहां पर पहुंचे, इतना सुंदर तालाब उसको देखते रहे। परम रम्य आराम यहूं जो राम ही सुख देत, ऐसा ये तालाब, ऐसा तालाब ये राम जी को भी सुख देने वाला, राम जी को भी सुख देने वाले का अर्थ क्या हुआ कि जो राम जी सारे संसार को सुख देते हैं वो तालाब आज राम जी को सुख दे रहा है। भगवान वहां गए, और चारों तरफ उन्होंने देखा तो भाई ऐसे जाके फूल कैसे तोड़ ले, तो पूछी मालीगण वहां मालियों से पूछा कि भाई हम पुष्प ले सकते हैं। और उन मालियों ने जाने कैसा पुण्य किया होगा, वहां कृष्णावतार में भगवान गए मथुरा में, मथुरा में जाकर के धोबी को तो मार दिया भगवान ने, मारते उसके कपड़े वगैरह सब पहन लिए। पहनने के बाद माला की जरूरत पड़ी तो पास में एक सुदामा नाम का माली था, उसके घर गए। क्या माली ने उनका स्वागत किया, खूब बढ़िया बढ़िया। भगवान ने कहा मेरे को माला पहनाओ भाई, मैं मथुरा आया हूँ, किसी ने मेरे को माला नहीं पहनाई, तो माला पहनाओ। तो उसने बड़ी सुंदर सुंदर माला पहनाई। भगवान ने कहा बोलो भाई क्या चाहते हो, हम तुमको माले का पुष्प का कुछ दे देवे, पैसा दे देवे कि महाराज मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। यही है बात, ये देखो प्रसंग लिया उन्होंने गोस्वामी जी ने। चहुंदिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदितमन। मालियों से पूछा तो मालियों का मन प्रसन्न हो गया और भगवान मालियों की आज्ञा मिल गई, बड़े प्रसन्नता से लेने लगे सब। ये तो काम राम जी का हो गया। अब दूसरी बात देखो, तेई अवसर सीता तय आई। उधर सीता जी आई, उधर सीता जी आई हो, सीता जी राम जी तो आए गुरु जी के भेजे हुए, और इधर सीता जी को भेजा माता जी ने। तेई अवसर सीता तय आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। ये जननी पठाई हो, मां ने भेजा। संग सखी सब सुभग सयानी, साथ में बहुत सी बुद्धिमती सयानी अच्छी स्वभाव वाली सखियां उनके साथ में थी, और सीता जी को चारों तरफ से घेरे घेरे बहुत सुंदर सुंदर मनोहर गीत गा रही थी। उस तालाब के पास में वो पहुंची, तालाब के पास में ही पार्वती का मंदिर था। इतना सुंदर मंदिर बनाया हुआ, क्या बताए, बड़े बड़ों का मन मोहित कर ले ऐसा सुंदर मंदिर। सीता जी गई तालाब में, स्नान किया, सखियों ने भी स्नान किया, और फिर बड़ी प्रसन्नता से गौरी के मंदिर में आई और गौरी की पूजा करने लगी। हो निज अनुरूप सुभग वर मांगा, सीता जी ने गौरी से यही प्रार्थना की कि हे गौरी माता, जैसे मेरे भाग्य में जैसा मेरा रूप जैसा मेरा भाग्य है ऐसा मुझे वर देना। इतने में ही एक सखी थी, वो सीता जी से छूट करके और वो फुलवाड़ी देखने के लिए गई थी। उसने राम और लक्ष्मण को देखा, देखती ऐसे वो प्रेम में मुग्ध हो गई कि वो दौड़ी दौड़ी जैसे तैसे सीता के पास आई, सीता को पकड़ लिया और ऐसे सीता जी को हांफती हुई, सीता जी, सीता अरे क्या बात है। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। उसके आंखों से आंसू झर रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है, वाणी कुछ बोली नहीं जा रही है। इतनी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न, सब कह रहे हैं कहो कारण निज हर्ष कर। अरे तुम्हारे आनंद का कारण क्या, बताओ तो बताओ। सब सखियां उसको घेर लेती हैं, सीता जी भी उसको पूछे बोलो क्या बात है क्या बात है। पूछे सब मृदु बहन, बहुत मीठी वाणी में बोलती हैं वो, बताओ बताओ क्या बात है, क्या बताओ, नहीं बताओ तुमने क्या देखा। देखन बाग कुंवर दुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए, दो राजकुमार आए, क्या बताऊं उनकी शोभा, किशोर अवस्था में है, नक्षिक से सुंदर है, एक श्याम वर्ण के गौर वर्ण के, मेरी आंखों में तो वाणी नहीं है और वाणी में आंख नहीं है, सुंदरता का बखान तो मैं वाणी से करूंगी ना, और सुंदरता को मैं आंख से देखूंगी ना, आंख से देखा हुआ और वाणी से बोला हुआ बहुत फर्क होता है सखियों। दोनों आज एक होती तो मैं उनका वर्णन कर लेती, पर दोनों का काम अलग अलग है, कुछ कहा नहीं जाता। सब सखियां प्रसन्न हो गई। सीता जी के हृदय में अति उत्कंठा, सीता जी के मन में जो एक अत्यंत उत्कंठा जागृत हुई ना, हैं कौन कौन ऐसे जो उत्कंठा हुई, उससे सब सखियां हर्षित हो गईं। एक सखी उनमें से एक सखी कहने लगी, ओ अये सखी, ऐसा लगता है कल कोई राजा दशरथ के दो बेटा आए थे और सखी वो विश्वामित्र के साथ आए थे। अरे हमने भी देखा था उनको, क्या उनका मोहित करने वाला रूप, उन्होंने मोहिनी ऐसी डाल दी है, शायद वही देख करके आई होगी। सारे नगर के नर नारी उनके ऊपर लट्टू हुए हुए हैं। भाई वास्तव में यदि उनको ही देखा है तो ऐसे देखने योग्य को तो अवश्य देखना चाहिए। हमने भी सुना कि उनकी छवि तो वास्तव में देखने लायक है। सीता जी ने कहा अच्छा ऐसे सुंदर है, चलो कि चलो। सीता जी के आंख दर्शन के लिए अकुलाने लग गए, ऐसे रूप को जाकर देखे। चली अग्र करी प्रिय सखी, उस सखी को आगे किया, सखी तुम आगे चलो, तुम उधर गए तुम आगे चलो। और गोस्वामी जी महाराज हम सबको सावधान करते हो कि प्रीति पुरातन लखई न कोई। इन सखियों को भी पता नहीं है कि ये सीता और राम का प्रेम तो आज का नहीं, अनादि है, अनादि प्रेम, ये नया प्रेम नहीं है। भगवान का और भक्त का प्रेम होता है वो कभी पुराना नहीं होता, पर नए दिने दिने नवम नवम। प्रीति पुरातन लखई न कोई, इनका प्रेम तो बहुत पुराना है जो बढ़ता ही जा रहा है। सुमिरिसी नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि जनुषि सुमृगी सभीत। अब उस बगीचे के अंदर सीता जी राम जी को देखने के लिए चल रही है, उनको बार बार नारद जी के वचन याद आते हैं कि तुम्हारा बहुत सुंदर विवाह होगा, संसार में अद्वितीय पुरुष होगा उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, सबसे विलक्षण बलवान होगा उसके साथ विवाह होगा, जिसके साथ भी विवाह होगा उसके साथ तुम्हारा वियोग भी होगा, उस वियोग के बाद तुम्हारा संयोग भी होगा, उस संयोग के बाद फिर वियोग होगा, और उस वियोग के बाद फिर दिव्य संयोग भी होगा। ऐसे नारद जी ने जितने जितने वचन कहे थे उन वचनों को सुनकर के सीता जी ध्यान मग्न भी होती है और चलती भी जा रही है। और जब चलती है तो चकित विलोकति सकल, यूं देखती कहां है, यूं देखती उधर देखती इधर देखती है, कैसे जिन जनु ससु शिशु मृगी सभीत, जैसे कोई मृगी का शिशु ही नहीं हिरणी का छोटा बच्चा, यू हिरणी का छोटा सा बच्चा और भयभीत यूं देखता है, ऐसे वो इधर उधर सीता जी देखने लगी। इधर जब सीता जी और आ रही है ना, तो सीता जी के आभूषण है, कंकन है, किंकिनी है, नूपुर है, ये जब सीता जी चलती उनकी आवाज सुनी तो राम जी महाराज कहते हैं, अरे लक्ष्मण इन आवाजों में तो बड़ा प्रेम टपक रहा है, ये आवाज किधर की हो सकती है। यूं राम जी महाराज कान लगाते हैं, सीता जी तो आंख दौड़ाती है, राम जी कान लगाते हैं। असकई फिरी चितये ते ही ओरा, जिधर से आवाज आ रही उधर ही देखने लगे, उधर ही कान लगाने लगे। सीए मुखी शशि भाई नयन चकोरा। सीता जी को देखा, सीता जी का मुख है वो मानो चंद्रमा के समान और राम जी की आंखें चकोर के समान। चंद्रमा को चकोर देखता है तो देखते ही रह जाता है, वो पलक डालता ही नहीं है। तो राम जी महाराज के जो नेत्र है वो अचंचल माने खुले के खुले रह गए। मनहु देखो, मनहु सकुचि जिमि निमि तजे दिगंचल। ये क्या हुआ कि ये नेत्रों के ऊपर ये जो जगह होती है ये राजा निमि की जगह है, राजा निमि का यहां निवास है, भागवत में आता है। और राजा निमि है ये जनक जी के वंश में है। तो मनहु सकुचि जिमि तजे दिगंचल, ये जब नेत्र बंद होते हैं ना, ये नेत्र बंद होते हैं तब ये राजा निमि यहां से चले जाते हैं। नेत्र खुले होते तो निमि चले जाते हैं और बंद होते तो निमि यहां आराम करते हैं। तो राम जी के नेत्र खुले रहे हूं, ऐसा लगा राजा निमि ने देखा कि अरे ये एक तो मेरी बेटी है और एक मेरा दामाद है। अपनी बेटी और अपने दामाद जब आपस में मिलते हो तो भाई वहां बड़े बूढ़े सास ससुर और वे सब आंख बंद के चले जाते हैं। ये भी बेटी जवाई बैठे हैं। तो मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल, मानो भाई हमारा जवाई है और हमारी बेटी है, ये आपस में मिले हुए मिल रहे हैं तो अपने को यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का प्रेम हम बड़े लोग यहां क्या करेंगे, ऐसा संकोच आया। मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। इतना आनंद आया भगवान को सीता जी की शोभा देखने पर, हृदय सराहत, हृदय में इतना आनंद आया, बचनु ना आवा, मुख से कुछ नहीं कहा, कहे कैसे, सब वहां डूबी हुई मन बुद्धि सब डूबी हुई राम जी की। राम जी महाराज सोच रहे हैं कि विधाता ने अपनी सारी निपुणता सीता जी के बनावट में ही रख दी। विरचि विश्व कह प्रगति दिखाई, ये अपनी चतुराई विश्व को आज प्रकट करके दिखा दी। और सुनो देखो, तुलसीदास जी कहते हैं सुंदरता को सुंदर करे, सीता जी तो आज सुंदरता को भी सुंदर बना रही है। जैसे छविग्रीय दीप शिखा जनु बरई, जैसे सुंदरता का एक महल हो और उस महल में अंधेरा हो गया हो, उस अंधेरे हुए महल में प्रकाश करना हो तो एक सुंदरता और लाओ, तो सीता जी तो है उसमें प्रकाश करने वाली। संसार भर की सुंदरता है वो महल, उसमें सीता दीप शिखा के समान है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई सीता जी की उपमा हम कैसे देवे, जितनी उपमा देंगे वो तो सब कवियों ने औरों के लिए दे दी, तो झूठी उपमा तो हमसे दी नहीं जाएगी। कई पटतरों, पटतरों माने किसके बराबर में करें हम इनको, कोई उपमा सीता जी की आज हमारे पास है ही नहीं। राम जी महाराज सीता जी की शोभा अपने हृदय में कर रहे हैं। सी शोभा ही बरनि प्रभु आपनी दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सना बचन समय अनुहारी। देखो राम जी महाराज कितने निश्चल है हो, आदमी दो जगह अपनी कमजोरी नहीं बताता। एक तो जो अपने में श्रद्धा करने वाले पुरुष हैं उनके सामने अपने को अपनी कमजोरी नहीं बताता, और एक अपने से बड़ों के सामने भी अपनी कमजोरी नहीं बताता। तो राम जी महाराज लक्ष्मण जैसा श्रद्धालु भाई, लक्ष्मण जैसा श्रद्धालु भाई है उसके सामने अपने मन की बात बोल देते हैं। लक्ष्मण ऐसा लगता है सीता ये जनक जी की बेटी यही होनी चाहिए, इसी के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, अपने सखियों के साथ में ये गौरी की पूजा करने के लिए आई है और ये फुलवारी देखने आई है। भाई लक्ष्मण ऐसी अलौकिक शोभा वाली आज तक तो मैंने कोई लड़की नहीं देखी, मेरा स्वाभाविक स्वच्छ पवित्र इसको देख करके जाने क्यों आकृष्ट हो गया, क्यों आकृष्ट हो गया ये विधाता जाने। मेरे सारे अंग फड़क रहे हैं, बाया नहीं दाया नेत्र, दाया हाथ, दाया पैर वगैरह सब फड़क रहे हैं, तो क्या बताऊं। रघुवंशियों का मन कभी भी कुपंथ में जाता नहीं है, लेकिन आज इसके प्रति मेरा मन क्यों आकृष्ट हो रहा है पता नहीं। लक्ष्मण जी को साफ साफ कह दी, लक्ष्मण जी देखते ही रह गए। अपने में श्रद्धा रखने वाले को कोई अपनी कमजोरी की बात कैसे कहेगा, कह दी राम जी ने। मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, मुझे मेरे मन के ऊपर पूरा विश्वास है कि जई सपने हूं पर नारिन ने हेरी। दूसरे की वस्तु पर मेरा मन कभी जा ही नहीं सकता है, आज इसके ऊपर कैसे मन गया, इसका मतलब ये दूसरे की नहीं है, ये मेरी होनी चाहिए। सुनो लक्ष्मण, जिनके लय न रिपुरन पीठी, संसार में ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं कि जो शत्रु को अपनी पीठ नहीं दिखाते। शत्रुओं ने जिनकी पीठ नहीं देखी ऐसे योद्धा बहुत कम होते हैं। ऐसे ही दूसरे की स्त्री ने जिनका मन और दृष्टि नहीं चुरा ली हो ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं। और जिनके घर मांगने के लिए जाएं और ना की आवाज न निकले ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं। ते नरवर थोरे जगमाई, ऐसी ऐसी ये बात कर रहे थे दोनों के दोनों भाई भाई। लक्ष्मण जी तो बिचारे कुछ बोले ही नहीं। करत बत कही अनुज सन, देखो लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले यहां, क्यों नहीं बोले हो बता देते हैं। राम जी ने सीता जी को देखा, उन्हीं सखियों के बीच में लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को देखा। राम जी ने अपने में श्रद्धा रखने वाले लक्ष्मण को सब बात बता दी, लेकिन लक्ष्मण जी ने राम जी के प्रति अतिशय श्रद्धा होने से उर्मिला के प्रेम को कुछ नहीं कहा। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण मेरे से छिपाता है, ठीक है आने दो मौका, मैं भी इसकी खबर लूंगा। चलते 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 खबर कहां ली, खबर ली लंका में, लंका में खबर ली। जब सीता जी अग्नि में से प्रकट हुई ना तब खबर ली। सागर ने आकर के कहा, अग्नि देवता ने कहा, अग्नि देवता ने कि महाराज जैसे सागर ने लक्ष्मी को आपके समर्पित किया था ऐसे ही आज मैं जनक के समान सीता को आपके हाथ में अर्पित करता हूं, क्योंकि सीता का कलंक और सीता की माया दोनों इस अग्नि में जल करके स्वाहा हो गई है। लक्ष्मण जी ने पूछा अलग से, महाराज ये मायामयी सीता थी क्या कि और क्या था? मायामयी सीता क्या, असली सीता को रावण चुरा ले जाता तो, रावण चुरा ले जाता तो हमारी लीला ही नहीं होती, क्यों असली सीता का ये चुराना हो ही नहीं सकता, क्यों असली सीता मेरे हृदय में रहती है, उसको रावण चुरा ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से नासिक से माया का प्रसंग चालू होता है। भगवान ने चित्रकूट तक जितनी लीला की वो भक्तों के लिए की, और चित्रकूट के बाद नासिक से जो लीला की वो मायावियों के लिए की। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुमसे छिपाया, एक बार तुम तो कंदमूल फल लेने गए थे, पीछे से मैंने सीता को कहा कि क्यों महाराज आपने मेरे से क्यों छिपाया, आप तो मेरे को बोल देते। भगवान ने क्या किया, तूने मेरे से कुछ नहीं छिपाया। कि मैंने क्या छिपाया, कि तुमने पुष्प वाटिका के प्रसंग में उर्मिला का प्रेम मुझसे छिपाया कि नहीं छिपाया। छिपाया वहां तुमने छिपाया, यहां हमने छिपा लिया। ये राम जी करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। देखो क्या तुलसीदास जी महाराज ने राम जी के मन का वर्णन किया है कि वे अनुज से तो बात कर रहे हैं और अपना मन है सीता के रूप के ऊपर लगा हुआ है। मुख सरोज, क्या सीता जी का जो मुख कमल है उस मुख कमल के अंदर मकरंद छवि शोभा रूपी जो रस है उस रस का भगवान का मन है वो भौरा बनकर के पान कर रहा है, अर्थात उनका मन सीता जी के मुख छवि के अंदर अटका हुआ है। इधर चितवती चकित चहूं दिसि सीता, कहां गए इंद्रप किशोर मनु चिंता। वो सीता जी देख रहे कहां गए, वो राजकुमार कहां गए, कहां गए, यूं देख रही कहां गए वो, कहां गए। जहां बिलो की मृग सावक नयनी, तनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। जहां भी देखती है वहां उनको कमल ही कमल दिखाई दे रहे। अरे हमको ये तो दिखा रहे कहां है, यूं देखती है तो लता ओट तब सखी ने लखाए। तब सखियों ने कहा देखो देखो तुम सीता, तुम जो यूं चकित होगे देख रहे वो लता के पीछे देखिए, लता के पीछे। लता ओट तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अब एक श्याम मूर्ति एक गौर मूर्ति को देखा, देखी रूप लोचन ललचाने, दोनों का रूप देखे उनके नेत्र ललचाने लगे। यूं ललचा ललचा करके राम जी को देख रहे हैं। हर से जनु निजी निज निधि पहचाने, जैसे अपना खुद का खजाना किसी को मिल जाए, अपने घर में अपना गड़ा हुआ खजाना मिलता है तो कैसे राजी होता है, ओहो एकदम खजाना मिल गया। ऐसे ऐसे सीता जी अपना ही खजाना प्राप्त करके खुश हो गई। थकी नयन रघुपति छवि देखे, पालिकन्नी हूं परिहरी निमेखे। हाँ उनके जो नेत्र है वो नीचे पड़ते ही नहीं है, राम जी को देखते रहे देखते रहे। उनके शरीर की शुद्धि नहीं रही, ज्यादा प्रेम से उनको शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रही। जैसे चकोरी शरद ऋतु की पूर्णिमा के रात्रि में उदित होने वाले चंद्रमा को देखते देखते चकोरी थकती नहीं है, ऐसे सीता जी देखती जा रही है। और देखो खास बात क्या है, देखो ध्यान कैसे होना चाहिए, सीता जी का ध्यान है वो। लोचन मग राम ही उर आनी, नेत्र के रास्ते से राम जी को देख करके राम जी की शोभा को हृदय में बैठा रही है। और दीने पलक कपाट सयानी, और फिर आंख बंद करती है कि वो रूप है अग्नि, और देखो और देखो उनके कान, हाँ मिलते जुलते। ध्यानस्थ प्रभु और बहिस्थ प्रभु दोनों की एकता है कि नहीं, कि एकता है। ऐसे जब सीता करने लगी तो सीता जी के साथ की सखियां हैं उनको स्वयं को सीता जी की इस प्रेमावस्था में संकोच सा होने लगा, मन में प्रसन्नता हुई कि आ जिस सीता के लिए हम सोचते थे कि ये राम भाएगा कि नहीं, सीता तो राम को बहुत चाहती है। कहीं न सकई मनु, कहीं न सकई कछु, मनु सकुचानी। इतने में ही राम जी महाराज और लक्ष्मण जी दोनों लता भवन से बाहर आए। ऐसा लगने लगा कि जैसे आकाश में आज तक तो एक ही चंद्रमा होता था, आज दो चंद्रमा हो गए। ऐसा होता नहीं, असंभावित अलंकार है ये, असंभावित अलंकार। ऐसी शोभा जैसे दो दो चंद्रमा निकले आए हो, निकसी जनुजुग विमल विदु जलद पटल बिलगाए, ऐसे राम जी की उनकी शोभा हो रही। अब शोभा सी सुभग दो, पहले तो राम जी महाराज ने सीता जी की शोभा देखी, अब सीता जी राम जी की शोभा देखती है। राम जी की शोभा में आज पहली बार एक बात सुनेंगे आप, कृष्ण भगवान के तो सुनते ही है, मोर मुकुट वंशी वाले बोलते ही है, लेकिन मोर पंख सिर सो अति नीके, धनुर्धारी भगवान रामावतार में मोर पंख लगाए थे, मोर पंख सिर सो अति गुच्छ बीच कुसुम कली के, और अच्छे अच्छे फूलों का यूं कुसुम यू लगाया हुआ। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई श्रवण सुमन, एक एक अंक का वर्णन कर रहे हैं, कैसा सुंदर तो इनके ललाट पर तिलक है, और शरीर पर पसीने की जो यूं गोल 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 मोती जैसी बूंदे बहुत अच्छी लगती है। कान बड़े अच्छे, आभूषण बड़े अच्छे, चारू चिबुक ठोडी बड़ी अच्छी, मुख छवि कहीं न जाए मोई पाई, जो बिलो की बहु काम ल जाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं राम जी की मुख छवि को कैसे कहूं, इतना ही कह सकता हूं कि सैकड़ों सैकड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं उनके। उर्मनिमाल कम्ब कल गीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा। ऐसा लगता है कामदेव का कोई हाथी हो, उस हाथी की जैसी सूंडियों लचक लगाती हो, ऐसे राम जी महाराज की जो भुजा है ये हाथी लचक रहता है। देखो हाथ यहां से भी लचक खाता है और यहां से भी लचक खाता है और यहां से भी लचक खाता है, ऐसे लचक खाता है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान, ऐसे राम जी महाराज की छवि का खूब ध्यान कर रही है। सीता जी भूल गई कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। भाई राम जी के प्रेम में तो यही दशा होनी चाहिए, अपने आप को भूल जाए तो वो भूल गई बिचारी। तब धीरज धरी एक आली से एक सखी ने कहा, सीता जी जल्दी चलो, आप तो इस ध्यान में बैठ गई, बहुरी गौरी कर ध्यान करेऊ, पहले आप चलो गौरी का ध्यान करो, गौरी की पूजा करो, फिर नृप किशोर देख के लेऊ, ये तो यही तो है, आप फिर इनको देखती रहना, पहले गौरी का ध्यान करो, गौरी के ध्यान के बिना इनका ध्यान किया हुआ क्या काम आएगा। सीता जी को संकोच हुआ, संकोच किस बात का, हमारी जैसी नहीं थी सीता जी को अपने प्रेम को बताती फिरे, माला लिए फिरते हम कि साहब हम भगवान के भक्त हैं। सीता जी ने कहा, अरे मेरा हृदय में रहने वाले राम जी की जो भक्ति है, प्रेम है, इस प्रेम को इसने पहचान लिया। तो सकुच ही संकोच हुआ, सकुच सीए तब नैन उघारे, सन्मुख दौ रघु सिंह निहारे। सामने उन दोनों को राम देखा। अब देखो सीता जी की हर्ष अवस्था भी होती है और बड़ा कष्ट भी होता है सीता जी को, क्यों, नखसिख देखी राम के शोभा, सुमेरी पिता पनु मनु अति शोभा। अपने पिताजी का व्रत याद करके मन में बहुत, अरे पिताजी ने कैसा व्रत कर लिया, उस धनुष को तोड़ेंगे तब राम मिलेंगे, ये तो तोड़ नहीं सकेंगे, और उस धनुष बड़ा कठोर है। सुमेरी पिता, देखो सीता जी आज अपना मां ऐश्वर्य भूल गई। आप देखना सीता जी को बरातियों के स्वागत में क्या सीता जी रिद्धि सिद्धियों को बुला करके कितना काम करवा देंगी। वो सीता जी अपने अंदर रहने वाली शक्ति से धनुष को एकदम हल्का तिनका बना सकती हैं। सीता जी अपना ऐश्वर्य भूल गई प्रेम में और राम जी के ऐश्वर्य को भूल गई, राम जी के ऐश्वर्य को भूल गई। अपना और भगवान का ऐश्वर्य भूल करके जो भगवान में प्रेम होता है ना, वो प्रेम विलक्षण होता है। हम लोग जो प्रेम करते हैं, संसार को बनाने वाले भगवान हैं, सब कर्मों को देने वाले भगवान हैं, दया करने वाले भगवान हैं, ये दो नंबर का प्रेम है हमारा। हम सोचते हैं कि दया करने वाले हैं तो हम पर दया करो, कुछ नहीं है, भगवान बस मेरे भगवान है, दया करो, क्रोध करो, मारो पीटो, धक्का मारो, कब बोटी बोटी काट दो, मेरे भगवान है, ऐसा प्रेम। सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोभा, ये जो सीता जी के मन में क्षोभ पैदा हुआ, ये बहुत सुंदर क्षोभ है ऐश्वर्य को भुला करके। परबस सखिन है, सीता जी की ये दशा होगी, चला न जाए उनसे, बोला न जाए। परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब गए सभीता। तब सीता जी यूं किसी कभी किसी के कंधे पर पड़ जाए, बोले उनके हाथ में चली जाए, पीछे तो पीछे चली जाए, आगे तो आगे चली जाए, ऐसी जब सबकी सखी हुई, अरे ये क्या हुआ, भयउ गहरु सब कहे सभीता, अरे अरे ये क्या हो गया सीता जी, ये क्या हो गया आपको, पुनी आऊ गए बेरिया काली, आप तो देखो सीता जी क्या हो, कल फिर आएंगे और इसी वक्त आएंगे, क्योंकि ये जब आज इसी वक्त आए तो कल जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, चलो चलो सीता जी अब चलो। तो गुड़ गिरा, ये बहुत गंभीर वाणी थी उस, माने ये ऐसा है कि तुम्हारा और राम का कभी वियोग संभव ही नहीं, क्या हो रहा है। गुड़ गिरा सुनी सी सकुचानी भयो विलंब मातु भय मानी, अरे माँ ने मुझे गौरी के पूजन के लिए भेजा था, मैं क्या करने लग गया। गौरी का पूजन करने भेजे थे हम तो श्याम के पूजन में लग गए, तो भयो विलंब मातु भय मानी, माता का भय मान करके और राम जी महाराज को छोड़ के वो जाने लगी। ओह जा तो रही है धरी बड़ी धीर, राम उर आने चल रही है, पीछे से देखती है, फिर थोड़ी दूर चली फिर पीछे देखती है, फिरे ही अपन पऊ पितु बस जाने। अब देखो वो बार बार देखती है, राम जी को हृदय में रख रही है और अब पिता का प्रण देख करके अपने आप को पिता के वश में जान करके जा रही है कि क्या करे, उधर तो माता का संकोच माता का भय, इधर पिता का प्रण। पिता का प्रण है, यदि ये पिता का प्रण है जो ही कायम रहेगा तो क्या पता राम जी मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आज पिताजी कह देवे ना कोई मेरा प्रण नहीं है, मैं तो मेरी बेटी, बेटी मेरी तो पसंद भी मेरा, तो मैं तो राम के साथ विवाह करूं, ऐसा कह दे तो कितना अच्छा है। इधर माता का भय इधर पिता की परवशता, देखो कैसा सुंदर सुयोग है ये। देखनम इस मृग बिहगत रू, अब जिधर राम जी है ना उधर के सखी, ये देखो ये वृक्ष कितना अच्छा है। देखनम इस, देखने के बहाने से, राम जी को देखने के बहाने से कभी वो मृग को देखती है, देखो वो हिरण कितना अच्छा है, देखो ये वृक्ष मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखनम इस मृग बिहगत रू फिराई बहोरी बहोरी, चलती चलती वापिस पीछे आती है। निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी, उनके मन में प्रीति बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। जान कठिन शिव चाप बिसूरती, इधर शिव जी का जो धनुष है इसको कठोर जान करके हृदय में बड़ा दुख लिए लिए जा रही है। एक तरफ दुख है एक तरफ आनंद है, राम जी की मूर्ति का ध्यान करती है तो ध्यान आनंद में डूब, उनका मन आनंद में डूब जाता है। और पिताजी की प्रतिज्ञा, शिव जी की जो शिव जी के धनुष की कठोरता उसको सुनकर के दुखी भी हो जाती है। इस अंतर द्वंद्व में सीता जी वहां चली आती है पार्वती के मंदिर में। पार्वती के मंदिर में जो ही पहुंचती है तो जाकर के गई भवानी भवन बहुरी बंदी चरण, जाके चरण पकड़ लेती है। वो पहले तो वो सीता जी ऐसे देखती है मूर्ति को, ऐसे देखती है कि चारु चित्त भीति लिख लेनी, अपने सुंदर चित्त के ऊपर मानो गौरी का चित्र लिख रही है। पर देखा कि मेरे चित्त में तो राम जी अंकित हुए, मैं अब गौरी को कैसे अंकित करूंगी, जाकर के पैर पकड़ लेती है और फिर प्रार्थना करती है। हे गिरिवर राज किशोरी, हे महेश मुख चंद चकोरी, हे गज बदन षडानन माता, हे जगत जननी दामिनी दुति गाता, आपके शरीर में तो बिजली की सी कांति झगमग हो रही है, आपका आदि मध्य अवसान नहीं है, संसार की उत्पत्ति प्रलय और विध्वंस पालन सब कुछ आप करने वाली हो, पति देवताओं में आप प्रमुख कहलाती हो, आपकी महिमा को हजारों हजारों सरस्वतियां और हजारों हजारों शेषनाग मिलकर के भी नहीं कह सकती है। हे गौरी जी आप अपनी अवस्था को भी याद कीजिए, आपकी अवस्था भी ऐसी थी, आपने शंकर जी के लिए तपस्या की थी, वैसी तपस्या तो हमारे पास है नहीं। मोर मनोरथ जानऊ नीके, मेरे मनोरथ को आप अच्छी तरह से जानना। क्यों? क्योंकि आपका भी यही मनोरथ था कि जन्म कोटि लगी रगरी हमारी और बरऊ शंभु नतु रहू कुमारी। ये आपकी भी तो दशा यही थी, वो आज दशा मेरी हो रही है। आप सदा सबके हृदय में रहने वाले हो, किन्ने वो प्रगटन कारण ते ही असकई चरण गहे बैदे ही। ऐसा कहकर के सीता जी उनके चरणों में गिर ही गई। सीता जी का दिव्य भाव जान करके पार्वती जी बहुत खुश हुई। विनय प्रेम बस बही भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। देखो लोग कहते हैं तुम्हारे पत्थर की मूर्ति क्या होता है, पत्थर की मूर्ति में भावना होती है ना, अपनी भावना करके आप पत्थर की मूर्ति में आप दर्शन कीजिए, आपको हर क्षण में नया नया भाव मिलेगा, जाके देख सकते हैं भाव के अनुसार। तो भवानी की जब मूर्ति देखी, अब दोबारा जब उन्होंने भगवान भवानी का यूं मुख देखा तो मूर्ति मुस्कानी। कहते हैं ये मूर्ति कैसे मुस्कुराएगी जी, मूर्ति तो पत्थर की बनी हुई है जी। अब वो हंसेगा तो जिसमें प्राण होगा ज्ञान होगा, पत्थर में तो कुछ होता नहीं। पार्वती जी मुस्कुराई। अरे सचमुच की पार्वती हो तो मुस्कुराना भी बने, लेकिन ये तो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, ये कैसे मुस्कुरा सकती है। ये बात हर किसी के समझ में नहीं आती। जो साधना करता है भगवान की मूर्ति में साक्षात भगवान का रूप देखता है, वो अपनी भावना से वह देखता है ना, उसकी भावना से दिखते है मूर्ति मुस्कुरा रही है। खसी माल, और यूं पड़ी यूं देख रही थी तो उनकी माला खिसक गई। खसी माने खिसकी, और खिस करके सीता जी के यूं यहां हृदय पर लगी। सादर सी प्रसाद सिर दूर लेकर अपने सिर पर रख लिया। और गौरी ने कहा, ओ सीता सुनो सुनो, हमारी हमारा आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद सदा सत्य होने वाला है। नारद जी का वचन कभी मिथ्या नहीं जाएगा। क्यों? नारद जी ने मुझे भी कहा था, जोगी जटिल अकाम मन, ऐसा तुम्हारा पति होगा। मैंने नारद जी के वचनों पर विश्वास किया, तुम्हारे भी नारद जी गुरु, मेरे भी नारद जी गुरु, अपने तो एक गुरु के चेलियां हैं, इसलिए अपना काम बनकर के रहेगा। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलई जासु मन राचा। जिसमें तुम्हारा मन लगा हुआ तुम्हें अवश्य वो पति मिलेगा। कहना तो ये चाहेगा धनुष टूटेगा, ये कहना चाहिए था, लेकिन धनुष तोड़ने के लिए प्रार्थना नहीं की है। देखो प्रार्थना करने वाली सीता ने यही कहा कि मेरा मनोरथ क्या है, मेरा मनोरथ ये नहीं कि धनुष टूटे, धनुष तो किसी के द्वारा ही टूट जाए। मेरा मनोरथ है मुझे राम मिले। धनुष टूटे ये मनोरथ किसका है? जनक जी का है, ये जनक जी का मनोरथ, मेरा मनोरथ नहीं है। आप तो मेरे मनोरथ को पूरा करो। तो कहा कि सोबरु मिले ही जाई मनुराचा, मन जाहे राचो मिले सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सने। ये करुणा निधान शब्द दे दिया कोड वर्ड पार्वती जी ने कि देखो सीता जी, अब आपका जब विवाह हो जाए तो आप आपस में बोलो ना, तो एक करुणा निधान ऐसा बोलना। वो करुणा निधान जी आप कहाँ जा रहे, करुणा निधान बोलिएगा। करुणा निधान सुजान शील सने जानत रावरो, रावरो माने आपका है, बड़ा शील सने वाला भरा है। ऐसी वो आशीर्वाद ली और अब सखी सखियों के साथ में सीता जी बड़ी हर्षित होती 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 अपने माँ के पास आ गई। रानी गौरी अनुकूल सियाई ही है हर सुन जाय, कहीं किसी से कुछ कहा नहीं। देखो सीता जी ने राम जी के प्रेम के बारे में भी किसी को कुछ नहीं कहा, तो गौरी ने जो आशीर्वाद दिया उसके लिए भी नहीं कहा। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फर कन लगे, उनके बाएं अंग तो यूं फड़कने लग गए। और इधर गुरु समीप गवने दो भाई, वो माँ के पास गए और इधर ये दोनों भाई गुरु समीप गवने दो भाई वहां गए। लो महाराज ये पुष्प लो। आए बेटा, हाँ आज हमने बड़ी विचित्र बात देखी। क्या देखा? कि महाराज हम वहाँ पुष्प वाटिका में गए तो वहाँ पर एक सुंदर राजकुमारी को देखा, शायद वो जनक की पुत्री हो सकती है, उसमें हमारा मन लग गया। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल नाही। तो राम जी ने, देखो सीता जी ने आशीर्वाद ले लिया, सीता जी ने आशीर्वाद ले लिया, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो इधर गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, जाओ राम तुम्हारे मनोरथ सफल हो गए, सफल हो गए। राम और लक्ष्मण दोनों बड़े बड़े आनंदित हो गए, बड़े आनंदित हो गए। अब रात हो गई, आराम से सब सो गए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम राम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
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 जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम।
सियावर रामचंद्र की
जय,
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय,
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय,
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय।
जय जय।